मनुस्मृति में तो विवाह विच्छेद करने वाली स्त्री को जनसमूह के सामने कुत्तों से कटवाने का विधान है। स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों एवं नाटकों तथा काव्यों में भी विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है, क्योंकि अपत्नी को यज्ञ करने के अधिकार से वंचित रखा जाता था। धर्मभीरु लोग अपत्नी होने की संभावना से ही घबरा जाते होंगे, परिणामतः उन्होंने इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं रखा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विवाह विच्छेद के प्रावधान की चर्चा करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। कौटिल्य कहते हैं कि जब स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से द्वेष करते हों तो उन्हें अलग किया जा सकता है। कन्यादान को गोदान से तुलनीय मानने वाला वैदिक समाज घर में गाय आने पर जितना खुश होता होगा उससे कुछ कम ही कन्या के जन्म पर होता था, तो शायद इसलिए कि कन्या का पालन पोषण, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां पुत्र के पालन पोषण से दुरूहतर होती थी। पढ़ी लिखी कन्या भी आखिर दूसरे घर को सौंप देनी पड़ती थी तो उसका विद्या वैभव और उसके नाम काढ़ा गया धन भी दूसरे घर चला जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मृत्यु के बाद की आत्मिक शांति पुत्र द्वारा दिए गए पिंडदान से ही संभव मानी गई थी। विवाह सूक्त में 10 पुत्रों की उत्पत्ति की कामना अवश्य की गई है, पर कन्याओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। अथर्व संहिता में कहा गया है कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और कन्या का जन्म किसी और के घर हो। अथर्व संहिता के एक और सूक्त में यहाँ तक कहा गया है कि हमारे यहाँ पुत्र के बाद पुत्र का ही जन्म हो, न कि कन्या का। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि पुत्र का जन्म होने पर पिता आनंदपूर्वक माता के पास लेटे हुए नवजात शिशु को हाथों में उठा लेता था, किंतु यदि कन्या होती थी तो उसे वह वहीं लेटे रहने देता था। ऐतरेय ब्राह्मण में तो कन्या की उत्पत्ति को स्पष्ट शोक का कारण माना गया है। आगे चलकर बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्र कामना के साथ कन्या जन्म को भी आदर दिया गया है। दुहिता में पंडिता जायते। वराह गृह सूत्र में बताया गया है कि अच्छी संतान विशेषकर सुंदर कन्याओं की उत्पत्ति के समय वधुएं दुंदुभी गोमुख आदिवादियों का वादन कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी। इस संदर्भ में एक बात अवश्य कहूंगी कि जन्म के समय लड़कियों का विशेष स्वागत भले ही न तब होता था और न अब होता है, पर विकास के क्रम में लड़कियां हमेशा से पिता माता, भाई पितामह, चाचा मामा सबकी चहेती रही हैं। पूरी परंपरा उनके खिलाफ खड़ी हो, उन्हें किसी का चहेता बनने के लिए पूरा आत्मिक तेज लगाना पड़ता है और विशिष्ट रूप से अच्छा भी होना पड़ता है, यह तो स्पष्ट है। हविष्यमान वायु अपने ग्रहण शक्ति से जिस प्रकार रसमान जलों को अपने से में संपृक्त कर लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक गृहपति अपनी पत्नी को अपने में मिला ले। इस प्रकार के महामिलन की परंपरा जहां रही हो वहां भी स्त्री के प्रति वैमनस्य पल्लवित हुआ और बखूबी। अब शायद बात तब बने जब सब्जेक्ट पोजीशन पलटे, हविष्यमान वायु की तरह स्त्रियां उठें और असमान जलों की तरह पुरुष को अपने में मिला ले। सप्तपदी की अंतिम प्रतिज्ञा का मर्म बड़ा है, जिसमें पति पत्नी को सखा कहकर संबोधित करता है। सखा के इसी भाव का स्मरण वाल्मीकि रामायण में उस समय राम के मुख से होता है जब सीता के अपहरण के बाद वे कहते हैं, सीता के सभी भाव सचमुच मुझ में समाहित थे और मेरे भाव सीता में। इसी तरह के कुछ भाव महाराज अज अपनी पत्नी इंदुमती के लिए विलाप में व्यक्त करते हैं। इंदुमती मेरे घर की शोभा, मंत्राणा के समय मंत्री, भोजन आदि के समय सखी, ललित कलाओं के ग्रहण के समय शिष्या थी, रघुवंश। मुश्किल यही है कि विलाप में वियोग या मृत्यु के समय तो खुले मन से प्रशस्ति पत्र बांट दिए जाते हैं, पर जीते जी इंदुमतियों को मान भरे भावनात्मक उद्गार नसीब नहीं होते। इस कटु यथार्थ के प्रतिकार के लिए ही आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। भीतरी आंदोलन झेलकर ही कोई बाहरी आंदोलन तक पहुंचता है। शाम के बाद ही दाम दंड भेद की स्थिति आती है, विशेषकर स्त्रियों के लिए स्वभाव से जो शांति प्रिय और मातृमना होती हैं। आदर्श पत्नी का कंस्ट्रक्ट व्यक्त करने वाले दो श्लोक यजुर्वेद में हैं। धारण पोषण में समर्थ, कार्यकुशल, दूरदर्शनी पत्नी के माध्यम से मैं संपूर्ण कार्यों का संपादन करूं, मैं उसके साथ तथा वह मेरे जीवन को कभी भी हानि न पहुंचाए और मैं उसके सम्यक दर्शन से वीर पुत्र को प्राप्त करूं। हे भार्य, तुम गृहस्थ संबंधी समस्त कार्यों की संचालिका हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और राजा के राज्य में सेनापति। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शत्रु की सेना रूपी स्त्री पर अधिकार करते हुए आक्रमकों का वध करूं। धारण करना और घर चलाना, स्त्री के मुख्य कर्तव्य तो यहाँ दिखाई देते हैं, पर पुरुष के कर्तव्य बाहर के आक्रामकों से बचाना और खुद आक्रमण और अधिकार स्थापन के लिए हरदम प्रस्तुत रहना। दूसरे श्लोक में स्त्री की तुलना एक पूरी सेना से की गई है और पुरुष के लिए आदर्श यह माना गया है कि पहले तो वह उस स्त्री रूपी सेना पर प्रभुत्व स्थापित करे और फिर उसके सहयोग से बाहरी शक्तियों पर। इस प्रकार नायकत्व हमेशा पुरुषों को सौंपा गया है और उसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि चौकीदारी के लिए जिस तरह का बलिष्ठ शरीर चाहिए वैसा स्त्रियों के पास नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक मजबूत मन और आत्मा होती है जिससे पहरे पड़ सकते हैं तो सूक्ष्मतर अवयवों पर, संस्कृति पर, मूल्यों पर। भौतिक द्रव्यों की सुरक्षा भले स्त्रियों के वश की नहीं हो, पर संस्कृति के सारे महीन उपादान वे सुरक्षित रखती हैं। उनका आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक तेज इसलिए घना होता है कि शारीरिक बल की क्षतिपूर्ति कर सके। फिर जिस धारण पोषण के आधार पर सृष्टि चलती है वह इसी कोमल प्राण शरीर की तरह ही की धारणी शक्ति का प्रतिफल है, जिसका संकेत गुरु नानक देव ने भी वार आसा में किया, पंडो ही पंडे उपजे पंडे बाज न कोय। ऋग संहिता में स्त्रियों के दम से चलने वाली गृहस्थी की शोभा का बहुत ही रोचक वर्णन है। जहां स्थूल पत्थर खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु चलता है, जहां सिलबट्टा की गति अबाध रूप में विद्यमान है, जहां गृह नारियां अतिथि सत्कार हेतु मथानी को रस्सी में बांध कर दही मंथन करती हैं, जहां निरंतर ओखली में बजता हुआ मूसल अपनी विजय दुमदुभी बजाता है, वहां देवराज इंद्र का आगमन होता है। यहां ओखली में बजते हुए मूसल की विजय दुमदुभी से संकेतित है गृहस्थी का वह साम्राज्य जिस पर स्त्रियों का एकाधिकार माना गया है। इस गृहस्थी के संचालन में पहले तो स्त्रियां सिर्फ तन मन से लगती थीं, अब तन मन धन से लगती हैं और फिर भी उन्हें यथेष्ट मान नहीं मिलता। दाल में नमक कम बेशी होने के दोष पर आज तक थालियां पटक दी जाती हैं और इस प्रकार का जीवन का वास्तविक नमक छीन लिया जाता है, कुछ इतना कि उसमें कोई स्वाद ही न बचे। स्त्री आंदोलन की सार्थकता यह है कि गृहस्थी को स्त्री के जीवन का केंद्रीय सत्य यह नहीं मानता, उसकी ज्ञान दीप्ति एवं विश्व के उद्बोधन की भूमिका पर उसका जोर और उसके दर्शन वाक के कतिपय मंत्रों में होते हैं, जिनका भावार्थ उद्धृत कर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। भावार्थ है एनोटेट कामा, जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु के घात प्रतिघात से, रोग शोक के अनुताप की मर्म भेदी पीड़ा से, चंचलता के घोर आवर्तन से गलित दलित छिन्न मर्म होकर हताशा के साथ उष्ण दीर्घ निश्वास का परित्याग कर रहे हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए अपना विशाल वक्षस्थल अनावृत कर दिया है और अनंत भुजाओं का प्रसारण कर तुम्हारे पीछे दौड़ रही हूँ। तुम मेरी संतति हो, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी गोद से दूर नहीं किया। यहाँ दुख और संताप कहाँ, जिसे देख कर तुम्हें प्रीति और आशंका है और मेरा ही स्तन्य है। सत्य उद्भाषित है, ज्योति से दिग्मंडल उद्भाषित है, मधुमय व्योम मात्र सुख से मुखरित है और अंतरिक्ष प्रणवनाद से परिपूरित है। मातृगोद की अमृतमयी संजीवनी धारा में अवगाहन करो और अभेद की अनुभूति के साथ जीवन के आनंद की उपलब्धि करो। इनोटेड कामबर, यहाँ दूध प्रतीक है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का, और यह दूध उन स्त्रियों के पास भी होता है जो किसी कारणवश माँ नहीं बन सकती, और उन पुरुषों के पास भी जो जीवन का मर्म समझते हैं। केवल आत्मज्ञान और बुद्धि तत्व से यदि काम चल जाता तो भाव और माया की सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं होती। शिव स्थारोण पराधोर यदेव मंदो न पश्यति, शिव अर्धनेश्वर की स्थिति में प्रतिष्ठित ही नहीं होते। माई रे मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, लोक गाथाओं में स्त्री। स्त्री संबंधी विमर्श के शास्त्रीय आधार जितने संपुष्ट हैं उससे कम संपुष्ट उसके लोकतात्विक आधार नहीं। लोक महिषा में स्त्री संबंधी दो द्वित्व विलोम आपस में टकराते हुए दिखते हैं, सुखिया और दुखिया। दो तरह की स्त्रियां मानी गई हैं जो लोक कथाओं में दो बहनें, दो पत्नियां, ननद भाभी, सास बहु, दो सहेलियां बनकर अक्सर प्रकट होती हैं। एक का पति उसे टूट कर प्यार करता है तो दूसरी का बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। एक के पास भरपूर सुख सुविधाएं हैं तो दूसरी के पास बिल्कुल नहीं। दो मन स्थितियों परिस्थितियों में पलती हुई भी वे किसी प्रकार आपसी संवाद कायम रखती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिसके पास सुख सुविधाएं हैं उसके पास नैतिक तेज उतना नहीं। शायद इस तर्क के आधार पर कि प्रकृति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यह संभव ही नहीं कि इस धरती पर कोई एक कोना हर तरह से भरा पूरा हो। स्त्रियों के बीच सिर्फ एक रिश्ता ऐसा माना जाता है जहां सुखिया दुखिया का द्वित्व विलोम काम नहीं करता, और वह रिश्ता है माँ बेटी का। यह एक रिश्ता ऐसा है जहाँ एक सुखी को दूसरा दुखी यह संभव ही नहीं। एक के सुख में ही दूसरे का सुख है और उसके दुख में दूसरे का दुख। इस रिश्ते में तादात्म्य कुछ इतना घनीभूत रहता है कि कम से कम माँ के लिए बेटी के दुख से निरपेक्ष रहकर किसी अपने सुख से जुड़ पाना बिल्कुल संभव नहीं होता। इसका विलोम संभव होता है, यानी कि संतान के सुख से अपने वैयक्तिक दुख का तन्वीकरण संभव हो जाता है, पर उसके दुख के साथ अपने किसी नितांत निजी सुख की प्रायः कल्पना भी नहीं सधती। प्रेम और सहानुभूति की यह चरम घनीभूत स्थिति पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका में भी संभव हो सकती है। शिव पार्वती, नल दमयंती आदि कुछ मिथकीय चरित्रों में संभव दिखाई भी गई है, और इसका सजल साक्ष्य लोक साहित्य देता है। बेटी की विदाई के बहुत से गीत ऐसे हैं जिनमें स्त्री जीवन की पीड़ाएं अपने ढंग से व्यक्त हुई हैं। सबका सार संक्षेप प्रस्तुतकर्ता पार्वती की माँ का यह कथन है, कही विधि सृजे नार जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। बचपन में पिता के किशोरावस्था में भाइयों की युवावस्था में पति की और बुढ़ापे में बेटों की अधीनता, लंबे समय तक भौतिक आर्थिक भावनात्मक परावलंबन स्त्री जीवन का केंद्रीय सत्य रहा है। किन्हीं अर्थों में अभी भी है। स्त्रियां साधनों का विनियोग करती हैं, उनका उत्पादन और साज संभाल भी उनके हिस्से होता है, पर उन साधनों के संवितरण पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता। मायके से आया स्त्री धन और स्वयं उपार्जित वेतन भी खर्च होता है पिता भाई पति पुत्रों की आज्ञा से ही। अपने हाथ से उठाकर वह किसी को एक अद्धि भी दे दे तो बहुधा इस पर हंगामे होते हैं। इसी का प्रतिशोध लोकगीतों के हास परिहास व्यंग कटाक्ष आदि कई प्रसंगों में हो जाता है। जहां जोगी भीख मांगने आता है तो बहू ससुर को दे आती है, कूड़ा फेंकने जाती है तो देवर को फेंक आती है। शादी ब्याह के अवसर पर मजाक मजाक में जो गालियां वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए गाई जाती हैं, वह भी शायद दो परिवारों के बीच संबंध विस्तार के क्रम में हुई गलत फहमियों मनमुटावों से निजात पाने का, खुदरा खुंदकों की भड़ास निकालने का एक उपाय ही है। बोलकर बात खत्म कर लेने के विवेक से परिचालित एक तरह का रेचन। दो सौतिनों के बीच पलने वाले खट्टे मीठे रिश्तों का भी खास मार्मिक साक्ष्य कुछ लोग गीत प्रस्तुत करते हैं। उनमें से दो तीन उदाहरण पर्याप्त होंगे। मैंने वही उदाहरण चुने हैं जिनमें उपेक्षिता पत्नी प्रेमिका की व्यथा मूर्त होती है और उसका मान भी, जो एक तरह से उसकी अस्मिता का जय घोष भी है। झरोके से झांक रही मेरो जिया जाने, राजा जी लाए लाए सौतिनिया, मैं दुल्हन सी लाग रही मेरो जिया जाने। यहाँ गाने वाली का जिया तो जो जानता है सो जानता ही है, उसे कैसा लग रहा है। सुनने वालियों का जिया भी यह जानकर कम विचलित नहीं होता कि उसे उसकी राजा जी ने छोड़ा भी है, इसलिए कि वह माँ नहीं बन सकती। सौतन ने जायो जायो एक ललना, मैं जच्चा सी लाग रही जिया जाने। बच्चा सौतन के घर हो रहा है, जच्चा सी लग रही है उपेक्षिता। या यह तादात्म है अथवा इच्छापूर्ति, शायद दोनों। वह खुश है, वह संतप्त है। वह इतनी खुश और इतनी संतप्त है कि दोनों के बीच का फर्क ही मिट गया है, और उसकी स्थिति वह हो गई है कि जो सिर्फ दृष्टा की हो जाती है। तभी तो झरोखे का प्रसंग आता है। यह एक तरह का राम झरोखा है, जहाँ बैठकर जग का मुजरा ही लिया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरे लोकगीत में उपेक्षिता अपने पति को जो चिट्ठी लिखती है वो पूरी की पूरी रख देने लायक है। प्रिय पर नाम ना तो सादर पर नाम, यहाँ तो सब कुछ कुछले कुछल छे, अहे कि हाल ला आत्मा विकल छे, यादो नय है तो पिया हमारी सुरतिया, बिसरल नय है मुदा ससुरक नाम। यानी मेरी सूरत तो आपको अब तक भूल गई होगी, पर ससुर का यानी मेरे पिता का नाम शायद नहीं भूला हो, क्योंकि वे तो आपकी ही तरह का एक पुरुष है। उनकी अपनी एक सामाजिक हैसियत है, जैसे किसी स्त्री की सूरत की तरह आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह कि मेरी सूरत में इतनी कांति कहाँ जो आपको खींच लाए, पर पिता के नाम में शायद इतनी ताकत बची है। आगे वह कहती है कि मायके में दिन भर खाली बैठी रहती हूँ तो मेरी भाभी ने तरस खाकर मुझे कोर्ट पीस का खेल सिखा दिया। कम से कम वही खेल खेलने आ जाइए, वे ताश के खेल से ही रूपक लेकर भगाती है। आहा छी बादशाह, हम छी गुलाम। तीसरे छंद में छोटी बहन के पति के घर आने का वर्णन है। तंज यह कि छोटी बहन का पति आकर उसे ले गया, मुझे लेने आप अब तक नहीं आए। पति के मधुर भाव जगाने का एक छोटा यत्न उस कथन में भी दुष्टभ्य है, जहाँ वह कहती है कि छोटी बहन के पति से मिलने जैसे ही मैं देहरी पर गई, उन्होंने अपने साढ़ू का नाम मुझसे पूछ लिया और मैं बैठ भी नहीं पाई कि पलट कर भागी। किस मुंह से लेती मैं आपका नाम, आपका मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है आदि। तीसरा जो लोकगीत में उद्धृत कर रही हूँ वह औरत की अस्मिता के साथ साथ उसके यौन इयत्ता का भी जयघोष है। मैं चंदा जैसी नार, राजा क्यों लाए सौतिनिया, जो मैं होती काली कलोटी तो लाते सौतिनिया, मेरे गोरे गोरे गाल राजा। आगे इसी क्रम में वह कहती कि मैं लंगड़ी लूड़ी होती और तुम सौतन लाते तो भी फिर एक बात थी, मेरी चाल तो हिरणी जैसी है, मैं गंजिन गुंजिन भी नहीं, मेरे बाल लंबे लंबे हैं। आगे वह कहती है कि मैं बाजिन बुझिन भी नहीं, मेरे लाल तो इस गांव के हर घर में खेलते हैं। इतनी मैं उर्वर हूँ, इतनी सक्षम कि घर घर मेरे चाहने वाले हैं, तुम क्या खाकर मुझसे टक्कर लोगे, यौनियत्ता भी मेरी तुमसे सघनतर ही है। हंसते हंसते जान निकाल लेने की ग्राम वधुओं की यह कला सूरदास के उधर शतक में लहक कर सामने आई है। लड़ाई का घरेलू अस्त्र ही है ग्राम्य प्रयास की यह परंपरा, उसका साक्ष्य लोक साहित्य देता है। कोमलता, धैर्य और सहिष्णुता कभी कभी स्त्री के ऐसे अस्त्र बन जाते हैं जिनसे बड़े से बड़े परास्त हो जाएं। कैसे, इसकी आहट महादेव वर्मा में सुनाई पड़ती है। इन्वर्टेड कामा, पुरुष चाहे उसे युद्ध में जीत कर लाया हो, चाहे अपहरण करके, चाहे उसकी इच्छा से उसे प्राप्त कर सका, चाहे अनिच्छा से, परंतु उसने प्रत्येक दशा में नारी को अपनी भावुकता का अर्घ देकर पूजा की। नारी भी नारियल के कड़े छिलके के भीतर छिपे जल के समान पुरुष की बाह्य कठोरता के भीतर छिपी स्निग्ध प्रवृत्ति का पता पा गई थी, अतः उसने सारी शक्ति केवल उसकी कोमल भावना जगाने में लगा दी। उसने न अपनी भुजाओं में शक्ति भरने और उस शक्ति के प्रदर्शन से पुरुष को चमत्कित करने का प्रयत्न किया और न अपनी विद्या बुद्धि से पुरुष को पराजित करने का विचार किया। वह जानती थी कि इन गुणों के प्रदर्शन से पुरुष में प्रतिद्वंद्वता की भावना जगेगी, परंतु वह पराजित होकर भी वशीभूत न हो सकेगा, क्योंकि प्रतिद्वंदियों की हार जीत में किसी प्रकार का आत्मसमर्पण संभव नहीं। कोष्टक बंद, श्रृंखला की कड़ियां। यही नैसर्गिक प्रज्ञा भारत की ग्राम वधुओं में लोकगीतों लोक कथाओं के आश्रय से लगातार व्यक्त हुई है, जहाँ कोमल हास पर्यास का भी एक रणनीति के तहत उपयोग करती रही हैं, यहाँ से नहीं, आज से नहीं बल्कि आदिकाल से। यह बात अलग है कि उनकी वाचिक परंपरा का कोई अपना संकलन करता, कोई अपना व्यास नहीं मिला। जो कुछ सुरक्षित रख सका वह केवल धर्म के आश्रय से, धर्मनिरपेक्ष सारी चीजें संतरणशील रही। लगभग भक्ति आंदोलन के काल में लौकिक संस्कृति में अनेक कवित्रियों की स्फुट रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं विकट नितंबा, शीला भद्दारिका, सुभद्रा, प्रभुदेवी, बिज्जा, मरुला, पद्मावती, गौरी, अवंती सुंदरी, फाल्गुहस्तिनी, मोरिका आदि। 12वीं शताब्दी में लोक जीवा पर चढ़ाया गीत भी एक लोक कवित्री की ही रचना है, जिसमें बेटी अपने लखिया बाबुल से शिकायत करती है कि भाई को तो महले दो महले मिले और उसके हिस्से आया परदेश। काहियों को ब्याहे विदेश रे लखिया बाबुल मेरे, भैया को देने बाबुल महला दुमहला, हमका दिए परदेश रे लखिया बाबुल मेरे। लोकगीतों के आदि शोधकर्ताओं में श्री राम नरेश त्रिपाठी ने गहरा अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि स्त्रियों के गीतों में पुरुषों का मिलाया हुआ एक शब्द भी नहीं है। स्त्री गीतों की सारी कीर्ति स्त्रियों के हिस्से की है। संभव हो सकता है कि एक एक गीत की रचना में 20 वर्ष और सैकड़ों मस्तिष्क लगे हों, पर मस्तिष्क ये स्त्रियों के ही हैं, यह निर्विवाद है। दिन उमादे सांखली नाम से राजस्थान में गाया जाने वाला एक गीत तो और पहले का है, चारण काल का। महत्वपूर्ण यह बात है कि चारणियों ने वीर काव्य प्राय नहीं लिखे, पर हास प्रयास और व्यंग उनके स्फुट दोहों में अवश्य मिलते हैं। चारण अचल दास की सातवीं पत्नी थी जी माँ चारणी। अचलदास को अपनी दूसरी पत्नी लीला प्रिय थी। उनकी तीसरी पत्नी उमादे को संबोधित कर जी माँ इस गीत में कहती हैं, दिन उमादे सांख लीते पी लियो भुलाए, सात बरसरो बछड़ियो तो किम रैन विदाय, पगे बजाऊं घुंगरू हाथ बजाऊं तुम्ब, उमा आंचल मुलावियो जो सांवल की तुम। लोकगीत का ही आसन पा चुके पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी चंपा दे के भी कई गीत हैं। पति पत्नी के बीच काव्य विनोद की कई कथाएं उनके नाम से प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार पृथ्वीराज राठौड़ ने दर्पण देख अपना श्वेत केश उखाड़ फेंका। चंपा दे की मुस्कान दर्पण में झलक गई। पृथ्वीराज ने कहा, पीथल धोला अबिया पहुली लागी खोड़, कामड़ मत गयंद ज्यू उभी मुख मरोड़। उत्तर में चंपा दे हंसती हुई बोली, हल तो धूना धोरिया पंथज गगधा पीर, तुरा तुरा अरऊ मनफल पक्का पक्का सहाऊ। स्त्री मनोविज्ञान की यथेष्ट समझ के लिए जात गीतों का अध्ययन भी आवश्यक दिखता है। सुमन राजे इन पर टिप्पणी करते हुए खूबसूरती से कहती हैं, एनोटेड कामा, यह लोकगीतों का वह एकांत कोना है जहाँ स्त्रियाँ एक पहर रात रहे उठकर चक्की चलाती हुई अपनी व्यथा कथा कहती हैं, एनोटेड कामा पर। एक गीत में बहू का भाई मिलने आता है। बहू बड़े चाव से पूछती है कि वह क्या भोजन बनाए, तो सास कहती है कि कोदो और मसौड़ा बना दो। कोदो एक प्रकार का निकृष्ट चावल है और मसौड़ा एक प्रकार की घास। इस पर बहन दुखी होकर भाई से कहती है, कैमन कूटो भैया कैमन पिसो रेना, भैया कैमन सिझमो रसोइया रेना, सांस खांची भरी बसना मजावे रेना। इतना काम करने के बाद भी बहन की स्थिति है, पीठ देखो भैया तो पीठ देखो जैसे धोबी का पाट रे, कपड़ा देखो भैया कपड़ा देखो जैसे समनवा के बदरी रे। माँ से कहा नहीं जा सकता, पिता से कहा नहीं जा सकता, वे वृद्ध हैं अशक्त हैं, इतना दुख कैसे सहेंगे। इसलिए भाई से कहती है, हे भाई मेरे दुख अपनी गठरी में बांध लो, जहाँ उसे खोलना वहाँ रोना। ये दुख बांधो भैया अपनी गठरिया, जहाँ खोलूँ तो हमारा रोऊँ रे। परदेश में काम करने वाले पतियों की पत्नियों की सत परीक्षा के जिस त्रास से सीता की तरह गुजरना पड़ता था, उसके भी कुछ मार्मिक प्रसंग लोकगीतों में है। यहाँ एक का सारांश दे देना पर्याप्त होगा। इन्वर्टेड कामा, आग जल उठी तेल खौलने लगा, बहन पास खड़ी होकर शपथ देने लगी। जब वह गंगा के शपथ देने लगी, घड़े का गंगा जल सूख गया। जब वह सूर्य की शपथ देने लगी तो सूर्य छिप गया। जब वह आग की शपथ देने लगी तो खौलता तेल ठंडा हो गया। लांछित स्त्री ने एक बार हाथ डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार में वह पार हो गई। हाथ में रुमाल लेकर भाई हंसने लगा, मुंह पर दुपट्टा डालकर पति रोने लगा कि हाय मेरी सती स्त्री, रूठ कर मार में अब नैहर चली जाएगी। बन जिस स्त्री तत्व की मान रक्षा के लिए पूरी प्रकृति सहयोगिनी हो चली है, खुद उसका तेज कितना प्रखर है, यह तो ओखली में चावल कूटते कूटते गाए जाने वाले एक छोटे से लोकगीत से स्पष्ट है। कूटो कूटो धान कूटो, साहब गोरा आए तो उसे भी कूट दो। आंदोलन मुखी शोध चूंकि स्त्री विमर्श के मूल प्रपत्तियों में एक है, मनोगत की स्तर पर भी इसने कई परिवर्तन घटित किए हैं और कई अभी घटित करने हैं। इस क्षेत्र में इसके काम दो श्रेणियों में बांटकर देखना उचित होगा। एक तो वह श्रेणी जिसे कायापलट श्रेणी या ट्रांसफॉर्मेटिव कैटेगरी कहेंगे। इस कायापलट में स्त्री की काया से जुड़े हुए पेंच भी शामिल हैं। काया जो उसके शोषण का प्राइमरी साइट, उसकी मूल पीठिका है, तो मुक्ति का मार्ग भी है ही, पर कैसे इसे सारवाद के खतरों से बचाया जाए, इस पर कई तरह के विमर्श जारी हैं। दूसरी श्रेणी है आत्मोद्दीपन की। कृष्णा सोबती का जिंदगी नावा, मन्नू भंडारी का महाभोज, मृदुलागर का अनित्य, मैत्रेय पुष्पा का इदन नमम और अलमा कबूतरी, गीतांजलि श्री का हमारा शहर उस बरस, नाश्रा शर्मा का सात नदियाँ एक समंदर, चित्रा मुद्गल का आमा, अलका सरावगी का कलिकथा वाया बाईपास, पढ़ते हुए कम से कम मुझे इसकी टेलीस्कोपन तकनीक का ध्यान आया, जिसके तहत इतिहास मिथक और आत्मकथा के खूबसूरत संधान घटित होता है, जिसे बायोमाइथोग्राफी या इतिहास और मिथक का आत्मसाक्ष्य कह सकते हैं। आत्मदीपन या इनर रिसोर्सेज के प्रश्न से जूझते हुए श्रेणी के कई स्कूल हैं। कुल मिलाकर जो प्रश्न अभी मंथन के केंद्र कहे जाएंगे वे हैं सतत बनाम विशिष्टता, संस्कृति बनाम उत्तर संरचनावादी, सारवाद बनाम सामाजिक संरचनावादी, एथनिक बनाम अंतर्राष्ट्रीय। ट्रांसथनिक पैरासेक्सुअल पुस्तक में हर तरह के लोगों का यौन शोषण मुक्त, जो नया समाज तैयार हो रहा है उसका जो अद्यतन शोध है उसका सार बताने से बात शायद कुछ स्पष्ट हो जाए। सुसान सेफर्ड की एक किताब अभी भी आई है, द रिमेस्कुलाइजेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर, बहुत ही प्रखर स्त्रीवादी तेज के साथ सभ्यता समीक्षा करती हुई कहती है कि वियतनाम युद्ध के समय से अमेरिका के चरित्र का जो अति पौरुष है वह सारी समस्याओं का मूल है।